एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। ज्ञान गोष्ठी में आप सबका फिर से स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट
और मैं हूं आपका साथी होस्ट।
आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, एलेनोर नेस्बिट की सिख धर्म, एक बहुत संक्षिप्त परिचय। अब नाम तो है संक्षिप्त परिचय, पर बातें इसमें काफी गहरी हैं।
हाँ बिल्कुल, और इसकी खास बात यह है कि ये किताब सिख धर्म को बस इतिहास की एक घटना नहीं मानती।
अच्छा।
हाँ, ये इसे एक जिंदा, मतलब एक विकसित हो रहे विश्व धर्म की तरह देखती है।
हाँ।
जो आज भी लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा है।
ये तो बहुत जरूरी नजरिया है, क्योंकि दुनिया भर में सिख समुदाय फैला हुआ है, उनका इतना योगदान है, लेकिन कई बार शायद पूरी जानकारी न होने से कुछ गलत फहमियां भी हो जाती हैं, है ना?
सही बात है। तो ये किताब यही सवाल उठाती है, भाई सिख धर्म असल में है क्या, सिख कौन है, मतलब सतही बातों से हटकर।
और ये समझाने के लिए हमारे साथ है लेखिका एलेनोर नेस्बिट। जरा उनके बारे में बताइए।
जी, एलेनोर नेस्बिट यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरविक यूके में प्रोफेसर एमेरिटा हैं और दक्षिण एशियाई धर्मों पर, खासकर सिख, हिंदू, जैन परंपराओं पर उनका काम बहुत जाना माना है। काफी सम्मानित विद्वान है वो।
लेकिन सुना है उनकी खासियत सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है।
हाँ, यही बात उन्हें अलग बनाती है। उन्होंने सिर्फ लाइब्रेरी में बैठकर नहीं लिखा, दशकों तक वो ब्रिटेन में दक्षिण एशियाई समुदायों के बीच रहीं उनके साथ।
अच्छा, मतलब फील्ड वर्क किया।
बिल्कुल, जिसे एथनोग्राफिक रिसर्च कहते हैं। उन्होंने लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी, उनकी तीज त्योहार, उनकी आस्था, उसको बहुत करीब से देखा और समझा है।
तो फिर उनका नजरिया तो काफी अलग होगा, सिर्फ सिद्धांतों पर नहीं बल्कि असल जीवन पर आधारित।
हाँ, वो देखती हैं कि सिद्धांत असल में लोगों की जिंदगी में, उनके समुदाय में, उनकी पहचान में कैसे उतरते हैं, और उनका तरीका बड़ा संतुलित है, सम्मानजनक भी है, पर सवाल पूछने वाला, गहराई में जाने वाला भी।
चलिए तो फिर किताब में गोता लगाते हैं। ये किताब है क्या असल में, किनके लिए है?
देखिए, ये किताब सिख धर्म, उसकी संस्कृति, उसके इतिहास को समझने का एक बहुत ही, कह सकते हैं, भरोसेमंद और आसान तरीका है।
आसान भी?
हाँ, भाषा ऐसी है कि कोई भी समझ सकता है, चाहे वो स्टूडेंट हो या कोई रिसर्चर या फिर कोई भी आम इंसान जो बस सिख धर्म के बारे में जानने की इच्छा रखता हो।
और किताब का सार क्या है, मतलब मुख्य तर्क क्या है?
किताब का एक बड़ा आइडिया ये है कि सिख धर्म को आप टुकड़ों में नहीं समझ सकते, ये एक पूरी तस्वीर है।
जैसे?
जैसे ईश्वर पर विश्वास, जो एक ईश्वर है, फिर गुरुओं का इतिहास, गुरु ग्रंथ साहिब का मार्गदर्शन, और समुदाय का व्यवहार, सेवा, लंगर, ये सब आपस में गुंथे हुए हैं, बिल्कुल एक कपड़े की तरह।
और आपने शुरू में कहा था कि लोग अक्सर सिर्फ बाहरी प्रतीकों पर ध्यान देते हैं।
हाँ, निस्बत इसी बात पर जोर देती हैं। कई बार लोग सिख पहचान को सिर्फ पगड़ी या दाढ़ी तक ही देख पाते हैं। ये किताब उस ऊपरी समझ और सिख जीवन की जो गहरी आध्यात्मिक और सामाजिक जड़ें हैं, उनके बीच एक पुल बनाती है।
तो ये यात्रा शुरू कहाँ से होती है किताब में?
किताब हमें ले चलती है पंजाब, गुरु नानक देव जी के समय में। वो 1469 में जन्मे। उस वक्त का माहौल कैसा था? हिंदू मुस्लिम परंपराएं थीं, लेकिन साथ ही धार्मिक कट्टरता, जाति व्यवस्था का बोलबाला था। ऐसे में गुरु नानक की शिक्षाएं एक नई रोशनी की तरह थीं। उन्होंने बहुत सीधी और क्रांतिकारी बातें कहीं।
क्या थीं वो मुख्य शिक्षाएं?
सबसे पहले तो ईश्वर एक है, निराकार, जिसे उन्होंने एक ओंकार कहा। कोई मूर्ति पूजा नहीं, कोई कर्मकांड नहीं।
और समाज के बारे में?
उन्होंने सामाजिक ऊंच नीच, खासकर जाति भेद को पूरी तरह नकारा। कहा सब बराबर हैं, और ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता क्या है? ध्यान करना, नेक कमाई करना, ईमानदारी से जीना और दूसरों की सेवा करना, बस।
उस समय के लिए तो ये वाकई बहुत बड़ी बातें थीं।
बिल्कुल, और यही नींव बनी। फिर उनके बाद 9 और गुरु आए, जिन्होंने इस विचार को आगे बढ़ाया, इसे एक संस्थागत रूप दिया।
हाँ, जैसे गुरु अंगद देव जी ने गुरमुखी लिपि को मानकीकृत किया।
सही, जिसमें गुरुओं की वाणी लिखी गई। फिर गुरु अमरदास जी ने लंगर की प्रथा को और मजबूत किया। ये जो सबका एक साथ बैठकर खाना है ना।
हाँ, समानता का कितना शक्तिशाली संदेश है इसमें।
बिल्कुल। फिर गुरु रामदास जी ने अमृतसर शहर की नींव रखी, और 5वें गुरु, गुरु अर्जन देव जी ने आदि ग्रंथ का संकलन किया।
आदि ग्रंथ यानी गुरु ग्रंथ साहब का पहला रूप।
हाँ, जिसमें पहले 5 गुरुओं और अन्य भक्त कवियों की वाणी थी, लेकिन गुरु अर्जन देव जी की शहादत भी हुई, जो सिख इतिहास में एक बहुत अहम मोड़ था।
और इसी शहादत और उस वक्त के बढ़ते मुगल दबाव के माहौल ने आगे चलकर खालसा पंथ की नींव रखी है ना, दसवें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी के समय में।
जी हाँ, माहौल बदल रहा था, समुदाय को ज्यादा संगठित और जरूरत पड़ने पर अपनी रक्षा करने में सक्षम होने की जरूरत महसूस हो रही थी।
तो फिर आया 1699 का वो ऐतिहासिक बैसाखी का दिन।
बिल्कुल, गुरु गोबिंद सिंह जी ने एक नाटकीय ढंग से 5 सिखों को चुना जिन्हें पंच प्यारे कहा गया। उन्हें अमृत छकाया और खालसा यानी शुद्ध लोगों के समुदाय की स्थापना की।
और यहीं पर 5 क का विधान आया, केश, कंघा, कड़ा, कछहरा, कृपाण।
हाँ, लेकिन नेस्बिट समझाती हैं कि ये सिर्फ बाहरी निशान नहीं है, हर एक का गहरा मतलब है।
क्या मतलब है इनका?
जैसे केश, प्रकृति के विधान को मानना, ईश्वर की मर्जी में रहना, कंघा सफाई, अनुशासन, कड़ा संयम, गुरु से जुड़ाव का एहसास, कछहरा नैतिक पवित्रता, और कृपाण आत्मरक्षा और अन्याय के खिलाफ लड़ने का संकल्प, जरूरतमंदों की रक्षा का प्रतीक।
यहीं से वो संत सिपाही वाली बात आती है।
बिल्कुल, एक सिख अंदर से संत जैसा हो, शांत, दयालु, ईश्वर से जुड़ा हुआ, लेकिन बाहर से एक सिपाही की तरह बहादुर, न्याय के लिए लड़ने को तैयार।
और इसी समय मेरी पीरी का सिद्धांत भी और पुख्ता हुआ।
हाँ, यानी सांसारिक अधिकार मीरी और आध्यात्मिक अधिकार पीरी का मेल। सिख धर्म दुनिया से भागने को नहीं कहता, कहता है दुनिया में रहो, जिम्मेदारियां निभाओ, लेकिन आध्यात्मिक मूल्यों के साथ।
गुरु गोविंद सिंह जी का एक और बहुत बड़ा, बल्कि शायद सबसे अनूठा काम था, मानव गुरु परंपरा को समाप्त करना।
जी हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ था। उन्होंने घोषणा की कि उनके बाद कोई देहधारी गुरु नहीं होगा,
बल्कि
आदि ग्रंथ, जिसमें अब 10वें गुरु की वाणी भी शामिल हो गई थी, यानी गुरु ग्रंथ साहिब, ही सिखों के शाश्वत जीवित गुरु होंगे।
एक ग्रंथ को जीवित गुरु का दर्जा, ये तो दुनिया के धर्मों में बहुत अनोखी बात है,
है ना? इसीलिए गुरु ग्रंथ साहिब सिखों के लिए सिर्फ एक किताब नहीं है, वो गुरु का रूप है। शब्द गुरु यानी ईश्वर का वचन ही गुरु है।
और इसकी खास बात ये भी है कि इसमें सिर्फ सिख गुरुओं की वाणी नहीं है।
सही कहा, इसमें कबीर, नामदेव, रविदास, बाबा फरीद जैसे कई हिंदू और मुस्लिम संतों, भक्तों की वाणी भी शामिल है। ये दिखाता है कि सत्य कहीं से भी आ सकता है। ये सर्वधर्म संभाव का एक अद्भुत उदाहरण है।
और गुरुद्वारे में जिस तरह गुरु ग्रंथ साहिब का आदर होता है, उससे ये जीवित गुरु वाली भावना साफ दिखती है।
बिल्कुल, ऊंचे आसन पर रखना, चंवर झुलाना, गुरुद्वारा सिर्फ पूजा की जगह नहीं, वो समुदाय के मिलने जुलने, एक दूसरे का साथ देने का केंद्र है।
और गुरुद्वारे का दिल है लंगर।
हाँ, लंगर यानी सामुदायिक रसोई। नेस्बिट इस पर बहुत जोर देती हैं। ये सिर्फ मुफ्त खाना नहीं है,
ये समानता का प्रैक्टिकल रूप है।
एकदम सही, अमीर गरीब, ऊंची नीची, जात औरत मर्द, सब एक साथ एक पंक्ति में बैठकर खाते हैं। ये जाति व्यवस्था और हर तरह के भेदभाव पर सीधी चोट है।
और सेवा, वो भी सिख जीवन का अहम हिस्सा है।
बिल्कुल जी, सेवा यानी बिना किसी स्वार्थ के सेवा करना। गुरुद्वारे में कोई भी काम हो, झाड़ू लगाना, बर्तन साफ करना, लंगर पकाना, परोसना, ये सब सेवा है। माना जाता है कि इससे अहंकार, होम्य कम होता है और इंसान ईश्वर के करीब आता है।
रोज की जिंदगी में भी तो कुछ नियम होंगे।
हाँ, नित्यनेम है रोज की प्रार्थनाएं, फिर जीवन के अलग अलग पड़ावों पर संस्कार हैं, जन्म, नामकरण, शादी, आनंद कारज, मृत्यु, ये सब व्यक्ति को समुदाय और गुरु से जोड़े रखते हैं।
ये तो हुई धर्म की जड़ों और सिद्धांतों की बात, लेकिन किताब ये भी बताती है कि ये धर्म पंजाब से निकलकर दुनिया भर में कैसे फैला।
हाँ, सिख डायस्पोरा पर भी एक पूरा अध्याय है, कैसे अलग अलग समय पर सिख पंजाब से निकलकर दुनिया के दूसरे कोनों में गए, ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका, ईस्ट अफ्रीका वगैरह।
और वहां जाकर उन्होंने अपनी पहचान कैसे बनाए रखी,
ये आसान नहीं था। उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, नई जगह, नई भाषा, नया कल्चर, फिर नस्लवाद, अपनी पहचान को लेकर गलतफहमियां।
हाँ, खासकर 9/11 के बाद पगड़ी को लेकर काफी भ्रम फैला।
बिल्कुल, लेकिन सिख समुदाय ने कमाल का लचीलापन दिखाया। उन्होंने मेहनत की, अपनी जगह बनाई, गुरुद्वारे स्थापित किए जो सिर्फ पूजा स्थल नहीं बने बल्कि सामुदायिक केंद्र भी बने, जहां लोग मिलते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, अपनी संस्कृति को जिंदा रखते हैं।
किताब कुछ मुश्किल और संवेदनशील मुद्दों पर भी बात करती है जो आज सिख समुदाय के सामने है।
हाँ, आखिरी अध्याय समकालीन मुद्दों पर है। इसमें खालिस्तान आंदोलन का जिक्र आता है। नेस्बिट उसे उसके ऐतिहासिक संदर्भ में रखती हैं, खासकर 1994 की घटनाओं के बाद जो हालात बने।
और ये जरूरी है कि हम साफ कर दें, कि हम यहाँ सिर्फ किताब में दी गई जानकारी बता रहे हैं, किसी राजनीतिक पक्ष का समर्थन नहीं कर रहे।
बिल्कुल, ये एक अकादमिक विश्लेषण है। इसके अलावा किताब समुदाय के अंदर चल रही बहसों पर भी रोशनी डालती है।
जैसे?
जैसे जाति का मुद्दा। सिख धर्म गुरुओं ने तो जाति को पूरी तरह नकारा, लंगर उसी का सबूत है, लेकिन सामाजिक स्तर पर कहीं ना कहीं इसका असर आज भी दिखता है। फिर महिलाओं की भूमिका का सवाल है। धर्मग्रंथ बराबरी की बात करते हैं, इतिहास में मिसालें भी हैं, लेकिन क्या नेतृत्व में उन्हें वाकई बराबरी का दर्जा मिला है, इस पर भी चर्चा है। और परंपरा और आधुनिकता के बीच कैसे तालमेल बिठाया जाए, ये सवाल तो है ही।
तो ये सब दिखाता है कि सिख धर्म कोई रुकी हुई चीज नहीं, बल्कि एक जीवंत सांस लेती हुई परंपरा है, जो आज की दुनिया के सवालों और चुनौतियों से लगातार जूझ रही है।
हाँ बिल्कुल।
तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटना चाहें तो कुछ मुख्य बातें क्या होंगी जो इस किताब से निकल कर आती हैं? पहली बात तो शायद वही है, एक ईश्वर की सर्वोच्चता, एक ओंकार।
हाँ, ये सबसे बुनियादी चीज है, गुरु नानक का मूल संदेश। एक ही रचयिता है, वो निराकार है, इसलिए मूर्ति पूजा कर्म कांड की जरूरत नहीं, उससे सीधा रिश्ता बनाओ ध्यान से, नाम सिमरन से।
और ये सोच हमें रोजमर्रा की जिंदगी में शायद बाहरी दिखावे से परे देखने में मदद कर सकती है ना, कि सबके अंदर वही एक तत्व है।
बिल्कुल। दूसरी खास बात है गुरु का जीवित स्वरूप, व्यक्ति से ग्रंथ तक का सफर, 10 गुरुओं के बाद गुरु ग्रंथ साहिब को शाश्वत गुरु मानना।
ये बात मुझे बहुत दिलचस्प लगती है, मतलब ज्ञान और सिद्धांतों को ही असल मार्गदर्शक मानना।
हाँ, ग्रंथ सिर्फ किताब नहीं, गुरु का जीवित ज्ञान है, शब्द ही गुरु हैं। तीसरा अहम बिंदु है समानता और सामाजिक न्याय।
जाति का खंडन, लंगर, महिलाओं की बराबरी की बात।
हाँ, और उत्पीड़ितों की रक्षा का आह्वान, वो संत सिपाही वाला आदर्श, ये आज भी कितना प्रासंगिक है। भारत में हम रोज देखते हैं समानता के लिए संघर्ष।
चौथा आपने बताया था मेरी पीरी, आध्यात्म और दुनियादारी का संगम।
जी, दुनिया से भागना नहीं, दुनिया में रहकर नैतिक जीवन जीना। काम भी करो, परिवार भी संभालो, समाज में योगदान भी दो, लेकिन अपने आध्यात्मिक मूल्यों को मत भूलो। ये काम और निजी जीवन में नैतिकता बनाए रखने की बड़ी सीख है।
और पांचवा, संगत और सेवा, समुदाय का महत्व और बिना स्वार्थ के सेवा करना।
हाँ, सिख धर्म बहुत समुदाय उन्मुख है। संगत यानी साथ मिलकर पूजा करना, एक दूसरे का सहारा बनना, और सेवा, ये अहंकार को कम करने और सब में ईश्वर को देखने का एक प्रैक्टिकल तरीका है। ये हमें अपने आस पड़ोस, अपने समाज से जुड़ने की प्रेरणा देता है।
किताब में कुछ ऐसी पंक्तियां या विचार भी हैं जो खास तौर से याद रह जाते हैं?
हाँ, कई हैं। जैसे गुरु नानक की शिक्षा का सार बताया गया है, सच्चाई ऊंची है लेकिन उससे भी ऊंचा है सच्चा जीवन।
इसका मतलब क्या हुआ?
मतलब सिर्फ सच जानना या मानना काफी नहीं है, उस सच को अपने जीवन में उतारना, ईमानदारी से, नेकी से, करुणा से जीना ज्यादा जरूरी है। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स जिसे कहते हैं।
सही बात है। एक और विचार जो बहुत शक्तिशाली लगा वो गुरु गोबिंद सिंह जी का है, पूरी मानव जाति को एक पहचानो।
हाँ, मानस की जात सभे एक ही पहचानो, क्या जबरदस्त बात है। रंग, नस्ल, जात, धर्म, लिंग, इन सब आधारों पर कोई भेद नहीं, सब इंसान एक हैं। लंगर इसी सोच का प्रतीक है।
अगर दुनिया ये मान ले तो कितनी समस्याएं सुलझ जाए।
बिल्कुल। और फिर वो जो सिख धर्म की शायद सबसे विशिष्ट पहचान है, शब्द गुरु है और गुरु शब्द है,
यानी गुरु ग्रंथ साहिब में जो ईश्वरीय वचन है वही असल गुरु है, वही मार्गदर्शक है।
हाँ, ये ज्ञान को, सिद्धांत को व्यक्ति से ऊपर रखता है, व्यक्ति आते जाते हैं, शाश्वत ज्ञान बना रहता है।
ये सारे सिद्धांत सुनने में बहुत अच्छे हैं, पर क्या आम जिंदगी में, चाहे कोई सिख हो या ना हो, इन्हें उतारा जा सकता है?
मुझे लगता है हाँ, काफी हद तक। जैसे लंगर का जो भाव है, कट्टर आतिथ्य और समानता का, हम अपने दायरे में कैसे ज्यादा समावेशी हो सकते हैं, कैसे उन दीवारों को तोड़ सकते हैं जो हमें बांटती हैं।
और वो नेक कमाई और बांटकर खाने वाली बात, किरत करनी वंड छकना।
हाँ, क्या हम अपने काम में ईमानदार हैं, और जो हमारे पास है क्या उसे सिर्फ अपना मानते हैं, या जरूरत पड़ने पर दूसरों के साथ साझा करने को तैयार हैं? ये सिर्फ पैसे की बात नहीं, समय, हुनर, कुछ भी हो सकता है।
सेवा को भी हम अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं, है ना?
बिल्कुल। निस्वार्थ सेवा को अहंकार कम करने का एक तरीका मानना। जब हम बिना किसी उम्मीद के किसी के लिए कुछ करते हैं तो एक अलग ही खुशी मिलती है, चाहे वो किसी की छोटी सी मदद हो या कोई बड़ा सामाजिक काम।
और वो संत सिपाही वाली मानसिकता, वो कैसे लागू हो?
वो है आंतरिक शांति और बाहरी साहस का संतुलन। मतलब मन से शांत और दयालु रहें, लेकिन जहां अन्याय देखें वहां चुप ना रहें। अपनी आवाज उठाएं, सही के लिए खड़े हों। ये डरपोक होने और आक्रामक होने के बीच का रास्ता है।
तो कुल मिलाकर इस किताब से आपके लिए सबसे बड़ी सीख क्या रही?
मेरे लिए शायद ये कि सिख धर्म सिर्फ कुछ रस्मों और इतिहास का संग्रह नहीं है, ये वाकई जीवन जीने का एक बहुत ही गहरा और साथ ही व्यावहारिक तरीका है। इसमें आस्था भी है, कर्म भी है और समाज के प्रति जिम्मेदारी भी, और ये आज की दुनिया के लिए बहुत प्रासंगिक लगता है।
हाँ, और मुझे नेस्बिट का तरीका बहुत पसंद आया। उन्होंने बहुत सम्मान और सहानुभूति के साथ, लेकिन फिर भी एक विश्लेषणात्मक नजरिए से इस धर्म की जटिलताओं और खूबसूरती को सामने रखा है। ये वाकई एक संक्षिप्त परिचय होकर भी बहुत कुछ सोचने को देती है।
बिल्कुल सहमत हूँ।
तो चलिए आज की इस ज्ञान गोष्ठी को यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज की इस बटी हुई दुनिया में सिख धर्म के समानता, सेवा और न्याय के सिद्धांत हमें क्या राह दिखा सकते हैं? या फिर एक पवित्र ग्रंथ को जीवित गुरु मानने का जो विचार है, वो हमारे अपने जीवन में ज्ञान और मार्गदर्शन के स्रोतों के बारे में हमें क्या सोचने पर मजबूर करता है?
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।